ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अंगश्यामुलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जागुडरोचि संविदधतं पट्टं वरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम दामो। परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री सुमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी की कृपा से हम लोगों की परिक्रमा का आज चतुर्थ दिवस की पंचम
आज पंचवा दिन
हाँ पंचम दिवस बहुत निर्विघ्न रूप से व्यतीत हुआ। इसमें हम लोगों ने वृंदावन की परिक्रमा आरंभ की और इसके बाद मधुबन तालबन कुमुदबन और तत्पर बहुलाबन और फिर आज हम लोग भद्रबन भांडीरबन मानसरोवर लौहबन माठबन ये सब को कर करके अभी तीन बजे साढ़े तीन बजे आप लोग लौटे हैं। यात्रियों को बहुत समय लगा तभी मैं नहीं समझता था कि इतने यात्री इतने कष्ट के बाद भी अभी प्रवचन में इतने आदमी आ सकेंगे। आई नेवर थॉट दैट सो मेनी डिवोटीज दे रिटर्न फ्रॉम परिक्रमा एट 3:30 बट येट दे आर असेंबल्ड हियर टू हियर हरि कथा। सो नाउ वी वेंट टू मानसरोवर वी टोल्ड सम हरि कथा देयर हाउ श्रीमती राधिका डिड मान हियर इन रासस्थली एंड फ्रॉम हियर नियर बाई दान गली मान गली प्रेम गली कुंज गली सी इन मान एंगर वीपिंग सी वेंट टू मानसरोवर very solitary place anyhow Krishna discovered and went there to pacify her। कुछ वहाँ हरि कथा हुई अभी श्रीमान क्या नाम श्यामदास जी उसके संबंध में कुछ हरि कथा और श्रीमती राधिका जी की का महत्व कुछ संक्षेप में वर्णन करेंगे।
Yeah.
वंदे गुरु पदद्वंदम भक्तवृंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजन समाजुक्तम वृंदावन मनोहर स्मृतामती तरुण तापम करुणया हरंती नृणाम अम्बंगूर्तनुक्तिसम कलिंदगिरि नंदनी तट सुरद्रुमालंगनी मदीयमति चुंगनी भवतु कापी कादंबनी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म नित्य अपृष्ठ विष्णु पाद अश्वक से भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हैसी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद अश्वक से भक्ति के जान नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनकी हैसी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त किरणी पादगण वैष्णव जन तथा मातृजनों के चरणों में जथा योग के दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबों की हैसी कृपा की प्रार्थना। श्रीला महाराज जी का आदेश प्राप्त हुआ श्री मान सरोवर के संबंध करने के लिए। ये जो मान है एक विप्रलंब का ही अवस्था विशेष है। पूर्व राग इत्यादि के अंतर्गत ये मान भी एक विप्रलंब है। पूर्व राग मान भी एक विप्रलंब के अंतर्गत किंतु मान यदि प्रेम में ना हो तो प्रेम का कोई वैशिष्ट नहीं रह जाता। मान ही प्रेम को और चरम स्वादन की ओर ले जाता है। प्रेम और परम नव नवीन रूप में स्वादनीय बन जाते इस मान के कारण। इसीलिए ये मान कारण अकारण राधा माधव परस्पर में कर बैठते। विशेष करके राधिका जी का जो मान है बहुत ही दुर्जय मान है। लेकिन कुटिल होने पर इसमें दोष नहीं है। वक्रम अपि शुद्ध हो जयति मूर द्वितीय राधिका निराग। राधा रानी का जो मान है वक्र होने पर भी परम शुद्ध है परम आस्वादनीय है। जहाँ पर कृष्ण इस मान में इस आस्वादन में इतना डूब जाते हैं खोज नहीं कर सकते। कृष्ण राधा जी को मान पर समन के लिए जा रहे हैं। राधा रानी माननीय होकर बैठी है लेकिन किंकरी गण उनके संग में है क्योंकि किंकरियां कभी राधा रानी से विलग नहीं हो सकती। जैसे शरीर से छाया को अलग नहीं किया जा सकता ऐसे किंकरी गण भी उनके संग में। और जब श्याम सुंदर वहां पहुंचे हैं एक कारण भी हो सकता है मान का नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ जो मान का बन उसमें कारण है क्योंकि सर्वत्र प्रेम देखिया सामता राधा रे कुटिल प्रेम है रो बामता। मंजरियों का आदेश है सखी नंदलाल आवन नहीं पावे इस तट को इस दृष्ट लंपट बंचक को हम और पुनः देखना नहीं चाहते। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। एक और तो कहता है कि मुझको जो जैसा भजन करता वैसा मैं भजन करता हूँ जैसा माम पर भजन थे और दूसरी ओर क्या भजन करता है पता चला। जैसे कि महाराज जी के मुखारविंद से पूर्व में श्रवण किए कि आप किस प्रकार के भक्त हैं कैसा भजन करते हैं। भक्तों भजन देखकर हम एक ऐसे विपर्य इत्यादि में गोपियों ने उनको चौथा नंबर का भक्त स्वीकार किए। आप आत्मा राम भी नहीं आत्मा काम भी नहीं कृतागिरी नहीं आप गुरुद्रोही है। अकृता के होना भी उतना खतरनाक नहीं फिर भी चलेगा। किसी ने आपके लिए कुछ किया और आप उसको ना मानो कोई बात नहीं लेकिन द्रोह करना है बहुत ही हानि चीज। एक और तो कहते हैं कि राधा रानी का प्रेम हमारा गुरु है राधिकारे प्रेम गुरु आमिष नट और जय भावे नचाय नृत्य करी उद्भट। उसमें वृंदा सखी से बोल रहे त्वंग मूर्ति, वृंदा जी बोल रहे राधन त्वंग मूर्ति पति तरुलतम वृक्ष पश्चात तैरु शिव भ्रमति नृत्य थी। और इधर वो कहता तो कृष्ण यहाँ पर अपने प्रेम को बोले नहीं नहीं मैं द्रोही नहीं हूँ, ऐसा मत सोचो मैं तुम लोगों का भजन करता हूँ, लेकिन माया परोचाम भजताम तिरोहितम मास भी तुम। हे राधे जी मैं तुमको परोच रूप में भजन कर रहा हूँ, आपसे अलग होकर के मेरा मन थोड़ी अलग है। ऐसा कि प्रेम संपुट में सुन रहे थे एक ही नाम से दो कमल निकले, एक नील और एक तीत वर्ण नील वर्ण का, तो हम दोनों तो एक ही हैं। राधा जी बोले तो और बहुत कपट है, तो मीठी मीठी बातों में फंसा रहे हो, यदि हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं आप ही करो। मैं मदर तो उसी लोक भेद स्वानंद वो मैं वृत्ति अबला तो माया पर रोचा भजता, ये बात क्यों उठा रहे। हमने तुम्हारे लिए घर परिवार सब पति सुतान भया भ्रातृ बांधवा नति विलंग गति विधस्त बोध गीत मोहिता। तुम्हारी एक एक जीत पर हम मोहित हो गए, एक चाल पर एक हंसी पर, और हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए और तुम हमको परोच में भजन कर। जो हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा था तुम भी मेरे लिए सब कुछ छोड़ के सामने आओ, ते परोच भजन और प्रत्यक्ष भजन बड़ा कपट है। हम जो छोड़े सारी दुनिया जानती उद्धव आदि सब ढंग का पर पीट रहे के माँ स्त्रियों ब्रह्मचारी व्यभिचार दूसरे इत्यादि बोल के हमारे प्रेम के लिए क्या क्या बोले और तुम्हारे लिए, इसलिए परोच में भजन करना ठीक नहीं है, कपट है। कृष्ण बोलते मुझसे ऐसा संभव नहीं हो सकता, तुम लोग जैसे मेरे लिए सब कुछ त्याग सकते हो मुझसे कहाँ होगा। लेकिन हे गोपियों ऐसा मत समझो मैं तुमसे अलग हूँ तुम्हारे विरह को बढ़ाने के लिए, विभ्रम को बढ़ाने के लिए। दूसरा उत्तर दी उन्होंने, कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने कुछ यही बोले एवं मदर
होता। अरे ठीक है चुपचाप रहो बोलने दो उसको, उसको बोलने दो, ठीक है उसको बोलने दो।
तो माया परोचम तो भजताम तिरोहितम मास व्यतम तत्प्रियम प्रिया, तुम्हारे ऊपर अप्रिया मत करो हम तुम्हारे प्रियतम, तुम हमारे प्रिया हो, लेकिन हम तुम्हारे केवल विरह को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से किया। गोपियां बोलते हैं कोई साधक नहीं जो हमारे विरह को बढ़ाना चाहे, तो हमारा जो प्रेम है जावद आश्रय वृद्धि जहाँ पर बढ़ने का स्थान है फिर भी बढ़ता है, तो यहाँ पर आप अलग हो गए हमारा क्या बढ़ाना चाहते हैं। कृष्ण को जब कुछ जवाब नहीं मिला तो ना पारे हम निर्बल इत्यादि से क्षमा मांगे और बोले आप लोग मान मत करो विशेष कर राधा जी से, क्योंकि मान का कई भेद है, कदम कदम पर मान होता है, तो सभी मानों के यहाँ मिला करके मैं कुछ कह रहा हूँ। राधा रानी चरणों को जाना चाहते हैं लेकिन पिंकरियां कहती नहीं राधा जी का आदेश नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि राधा जी कुछ क्रोध में माननी होने पर थोड़ा सा क्रोध स्वाभाविक है, जैसा कि भागवत आदि में देखा भ्रुकुटी महावत्या प्रेम सरम विवल घंती वैश्वत कटा छेपे दसदस्त दसद। कृष्ण उनकी स्वरूप को दर्शन करके इनका श्वेत आदि होने लग गए, ये भी कोई साधारण नहीं है, साची विष्णु दृष्टि ये भी बहुत बड़े जोधा है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं तृष्टि कटाक्ष रूप दृष्टि को धारण करते हैं और उस पर भी वो करोड़ों बाण को एक साथ में छोड़ते हैं और कोई भी बाण उनका विफल नहीं जाता, ठीक अपने लक्ष्य पर ही पहुंचता है एक साथ में। लेकिन आज उनका वो बाण वास्त्र शस्त्र प्रबोधानंद के अनुसार सब नीचे गिर पड़ रहा है, बंसी करानी पतितम, और उनके दासियों के चरणों में कह रहे थे आप हमारे लिए उनसे अन्याय भी नहीं करिए, मुझ भी इतना सामर्थ्य नहीं है। दासियां हंसती हैं कि आप तो बहुत बड़े वीर हैं, आपने पता नहीं कितने लोगों को पराजित किया। कृष्ण बोलते सच है मैं वीर हूँ इसमें कोई दो राय नहीं, सूरदास आदि बड़े बड़े भक्तों ने हमारी वीरता को अपने काव्यों में वर्णन किया है, लेकिन आज मेरा वो वीरता पता नहीं कहाँ चला गया। आज हमारे आंखों में लचीले सकुचीले जो इत्यादि भावों से जो सबको बसीभूत करता हूँ वो आज हमारा भाव होने पर भी राधा जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि प्रहित कटाक्ष निशित बाने हरे हृदयंग विदयंग सीधे सीधे। कविकानंद पूजी कहते राधा रानी जी को हंसी है, ये मानुष बाण को कटाचुटी बाण को तेज करने के लिए एक शान है, एक धार है, उस कटाच में तीव्रता है कि तेज आ गया, और तालों में कचल है कालकूट, ये विष बहुत खतरनाक है। महादेव जी उस विष को तो पी गए, लेकिन एक कटाचुटी की विष कृष्ण को जब बाण के ऊपर चढ़कर करता, बाण के ऊपर कटाच के ऊपर उसको लगा कर कृष्ण को संधान किए, तो हरि हृदय विदयन विभेदन, हरि का जो दशा हो गई, जिसके लिए कवि ने बोला कि उनकी आंख उनका सौंदर्य कौन उसके सामने खड़ा होगा, क्या चाल शान अलबेली है गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तीन के चित रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रसरूप माधुरी बरसत है वह जात चले रस्ते रस्ते, श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। लेकिन आज इनकी ऐसी स्थिति हो गई, वो आंखों में लजीले सकचूले सरसीले सूरभीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले है रूप के लुभीले कजरीले उन मिले भर छीले तीर छीले से गतीले और फसीले है ललित किशोरी गर्भीले भवकीलो माती अति ही रंगीले चमकीले और चकीले है छबीले और छकीले अरु नीले से नसीले आली नैना नंद लाल के नचीले हर नुकीले है। बहुत विशेषण दिया, लेकिन जितना भी अस्त्रों का प्रयोग करते हैं करेंगे क्या, धनुष बाण तो पहले ही कट गया, धनुष तो पहले उनका उतर गया और उनके आगे उनका कुछ भी नहीं चला, केवल उनके पिंकरियों के चरणों प्रार्थना करने जल किंकरी से बहुत खलु काकु वाणी नित्यम परस कोई साधारण नहीं। कृष्ण पहले भी सुने जिनके चरणों में हजारों देव हजारों ब्रह्मा आदि मुनि ऋषि सब क्रीट कोटि विद पाद पीठा जम ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुत इत्यादि स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वो राधा रानी के पास अभी क्या उनके दासियों के चरणों में लौटे, तो राधा रानी क्या महिमा है कैसे समझे। सूर्य आदि कह रहे हैं कृष्ण रोते रोते बोले हे राधे मैंने बड़े बड़े काम किया, लेकिन ये तो शर्म नहीं तब हूँ गयो सुनु राधे जे तो सर्व मोह को यह मान गयो, धरनी धरन विधि भेद रचो मधु से कैट शत्रु हयो द्विज निपकियो दुसह दुसमेटो बलि के राज दयो, आगे पकर केसी मथी दावा नल अचयो सूर श्याम बल तो ही मनावत मोहि सब विसर गयो। मैंने क्या नहीं किया, लेकिन उसमें इतना परिश्रम नहीं हुआ, मैंने बड़ा रूप में पृथ्वी को ही तन पर धारण कर लिया, इतने बड़े ब्रह्मांड को राम रूप में ऐसे ही धनुष को तोड़ डाला, देखते ही कब लिया कब तोड़ा किसी को पता नहीं चला, ले तब उठावट खेकत थाड़े असही मद राम धनु तोड़ा भरे भुवन भूमि गोर कटोरा चिक रही दिग्गज डोल गिरी लोद सागर खरवरे, पूरा विश्व में कपकपी सा मच गया, परशुराम जी की समाधि टूट गई, पर्वत के शिखर टूट कर गिरने लगे, समुद्र में हलचल मच गई, मगर और मछली जितने हैं सब कलरव करने लगे, कोई प्रलय तो नहीं आ गया। ऐसे ऐसे कार्य को मैंने किया, रामन जैसे को बंद कर डाला और दावा नल का पान किया, गासुर बकासुर सब को केसी आदि को भी मत डाला, लेकिन आज आपको मनाते मनाते मेरा उस शक्ति पता नहीं कहाँ चला, सूर्य श्याम बल सोही मनावत मोहि सब बिसर गयो। इसलिए राधे यदि आप कृपा करके स्वयं अपना मान को हमें दे दें, कृपा करके दान रूप में, तब इस मान को प्रसन्न हो सकता है, मैं अपने शक्ति से नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वृंदावनेश्वरी कृष्ण मानव सब करने लगे क्रोधानंद जी के भाव में, कृष्ण वृंदावनेश्वरी तवैव पदार बिंदम प्रेमा मृतैक मकरंदर सौख पूर्णम हृदय अर्पित मधुपते स्मरताप उग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामी, हे राधे मैं उन चरणों का आश्रय लेता हूँ जिसमें कितने प्रेम मकरंद भरा हुआ, जिस मकरंद में पता नहीं कितने ऋषि मुनि लोग अवगहन करके अपने को सिद्धता प्रदान करते, ब्रह्मादि महाराज्य दूरते सेवते सुर ताम राजिका जो भजते देवर्षि तम भजे मह, राधा रानी के चरण पता नहीं पूरे विश्व के लिए भजनीय, कृष्ण स्वयं उनके चरणों में गिर कर कह रहे हैं कि हमारे हृदय पर धारण करे, यदि आपके चरण धूलि हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा भी भाग बदल सकता है, व्रत के व्रतिक भक्तों का कीर्तन राधे तेरी चरणों की यदि धूल नहीं मिल जाए तो सच कहता हूँ मेरा तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना न चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए फिर मुझके ही संभल पाऊंगा, कृष्ण मानो नहीं करने का कुछ भी सजा दो इस अपराधी के ऊपर, आप जो भी दंड आपको उचित लगे मारो पीटो मारवी राखवी जो इच्छा तुम्हारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकार है, हम तो आपका है और आपके ही रहेंगे। इस प्रकार से बनाई करते करते जैसा कि सुबह में तीर्थ महाराज जी बोल रहे थे देवी पद पल्लम उदारम, जब इस प्रकार कृष्ण आ गए तो उस समय राधा जी का मान कुछ दूर हुआ और परस्पर मान सरोवर मिलन हुआ। मिलन के पूर्व जो बीरा में राधिका जी रोई थी जिसके अश्रु के जल से सरोवर का निर्माण हुआ जो महाराज जी लोग प्रातः कानून बताए। अब शायद मेरा समय हो गया इसलिए मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। इतना जरूर शेष में कहूँगा ये जो हम ये जो कथा गुरु वैष्णव के मुखार्जन से श्रवण कर रहे हैं ये कथा क्यों सुन रहे हैं? जानने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान ही प्रयास समुद्र पास से नमन थे ब्रज गोपीगण कृष्ण कथा को इसलिए सुनती है कहती है कि मैं उनको जानूंगी क्यों ज्ञान जो कृष्ण को मैं जानूंगा। श्री जी को सही पाद ही कहते हैं जो भक्ति प्रतिकूल ज्ञान वो तो वर्जन नहीं है हम ब्रह्मा के सोहम, जो भक्ति अनुकूल ज्ञान है उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। भगवान करते क्यों है क्या करते हैं उसको भी जानने की जरूरत नहीं, केवल सतांग नहीं ज्ञाने प्रयास समुद्र पास नवं केव जीवन की सन्मुखृताम भवदीय वार्ताम स्थान स्थित सुतिगतम धनुवांग मनुवृद्धो प्राय सजीत जित त्रिलोक्याम। कभी कभी पूर्णमासी आदि गर्गाचार्य गोपिकाओं से बोलते कृष्ण भगवान है परमात्मा है सुन लेते लेकिन उसको लिख पढ़ के दिमाग में नहीं बैठाते कि भगवान है परमात्मा सृष्टि पर लयादि करते, ठीक है करता होगा लेकिन वो हमारे प्रियतम है। अर्थात ये तो सुनने के बाद भी अपना जो भाव है वो संकुचित नहीं होता है। ब्रजवासियों के ब्रज लोकानुसार इस भाव को हर समय बना के रखना पड़े। कृष्ण जति परमात्मा इस बात को गोपिकाओं ज्ञान है गर्गाचार्य आदि श्रवण किए बलदेव पार्टी बोलते हैं लेकिन उनका भगवान ऐसा है जैसे स्वयं का ही पुत्र मानो भगवान। श्री बलदेव पार्टी कह रहे हैं कि किसी राजा को यदि हम पुत्रवत स्नेह करें तो वहां पर संकोच संभ्रम गौरव आदि आकर के बाधा उपस्थित कर देता है किंतु यदि अपना पुत्र राजा हो तो वहां पर कोई भी संभ्रम कोई भी परेशानी बाधा नहीं देता। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है पर तत्व गोपियों का अपना है गुरु वैष्णव के मुंह से ही कथा सुनने को मिलती है कृष्ण जो है हमारे अपने हैं उनसे ममत्व युक्त होकर उनकी कथा को श्रवण करके उनकी सेवा में लगना है न कि केवल ज्ञान अर्जित करके बैठे रहने से। ज्ञान आदि के प्रयास मत करो स्थान स्थित अपने भाव में अपने धाम स्थित होकर महापुरुषों के मुंह से कथा श्रवण जो करे उनकी प्रसन्नता के लिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्म न जन्म कर्म लीला नाम तदर्थे फिर चेष्टा हमारी जितनी भी चेष्टा है भगवान के लिए कथा उनकी प्रसन्नता के लिए परिक्रमा उनकी प्रसन्नता के लिए हर चीज क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है। यहाँ पर अपना कोई ज्ञान अपना कोई स्वार्थ अपना कोई वासना नहीं इसी आशा के साथ ही गुरु वैष्णव का अनुग्रह में आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं हम भी अपने को धन्य समझते हैं कैसे वृंदावन धाम में और इस प्रकार यहाँ पर राधा माधव की नित्य लीला कथाओं का प्रवाह हो रहा है। हम लोग बैठे बैठे आराम से जीते हैं न कौड़ी लग रहा है न दाम लग रहा है और सोच नहीं चलते कितना सौभाग्य है। अरे मन तू क्यों दुनियादारी के चक्कर में भटकता है चिंदी विषय दुर्विष बनम जही विषय दुर्विष बनम चिंदी दुरासा महापसान आये मति व्यांगी जजा समूढ़या वृंदावनम। हे मेरे मन रूपी पक्षी तू सब कामना वासना को त्याग करके आज ही तू वृंदावन के लिए उड़ चल और कहीं मत जाए यहीं कर तू अपने विश्राम बना अपना डेरा डाले से कह तू अपने वचन को विश्राम देते हैं। मानसा कल्प तरु भेषा कृपा
कुछ कहेगा कैन यू टेल समथिंग समथिंग
मज्ञान चमनंदस्य गणना सलाके चक्षुरं तमेन तस्मासु सो आई डिडंट टेक सो मेनी नोट्स सो प्रभुजी वाज सेइंग Without Brahma, then there's no question of man or angry mood. If someone performs man, but we have not so much relationship, then it doesn't mean anything to us. Therefore, Radharani's man is so much exalted because her man comes within Paramatana ke Mahabhava within that is Brahman. The Brahman is very much exalted thing and worshipful of the three worlds. Therefore, when Srimati Radhika left Ras and went to Mansarovar, very fortunate today we went there and heard from Guru Maharaj, that there Srimati Radhika, always surrounded by her kinkris, just like a person's always accompanied by their shadows, Radharani's kinkri is always there, and they got the order from Srimati Radhika. Oh, that black, debauchee, cheetah, rascal, he should not be allowed in here. Therefore, taking the order of Srimati Radhika on the head, the kinkris are guarding that kunj, that man study there at Mansarovar. So, how astonishing is Srimati Radhika's man, even though her prema is very pure, it moves in a very crooked way. Even though her prema is all-pervading, still it's expanding. So this is contrary and an astonishing thing. So how much Krishna is anxious to taste the nectar of Srimati Radhika's man? Therefore, her man is a very astonishing thing. Last night we heard from Guru Maharaj, the gopis asked Krishna, of these four types of persons, which one are you? Are you a businessman? You only love those who love you? Are you a businessman? Are you like parents and guru? If they love you, if they do not reciprocate with love, still you give your love to them? Are you Atmaram? Are you Aptakam? Are you Guru Drohi or Adhikakra, ungrateful? So Krishna said, I am none of these, isn't it? So the gopis answered with two verses at the end of all this. Now Krishna answered himself with two verses. O gopis, the reason I disappeared from you was that I was doing your bhajan in a parokshavad, in a very hidden way. So gopis, instead of becoming pleased, became very disturbed. Or what type of nonsense cheating answer is this? We have not hidden anything from you. We have given up our friends, family, our society, love, shame, everything. Fear of the Vedas. We have given everything up in a very open way for your bhajan. And you promised in the Gita, Jedatam Mamprapadimte Tamsateva Bhajahamyaham. In the Gita, you yourself promised that I will reciprocate with your prem in the way that you do worship of me. So you promised in the Gita, and we left everything from you, so you can leave something for us. But no, you're saying I'm doing your bhajan in a hidden way. So this is one type of duplicity. So this is one type of duplicity, one type of cheating. Then Krishna said no. Then he gave the second verse. No, I have disappeared just to increase your prema. So then the gopis became more angry. Isn't it? We are not sadhats, isn't it? So there's no place for our prem to increase. We are not ordinary persons. Therefore, you're trying to increase our prem is just another type of cheating. Therefore, of the four types, isn't it? The Adhikara, the person who is ungrateful, is that, isn't it? They're not so bad. Because you love them, but they neglect, but they do not do anything against you. So you're worse than being ungrateful. You're Guru Drohi. Because one time you accepted our prem, Krishna Radhika Prema Guru Anushishanata. One time you admit Radharani's prem is my guru, so you admitted as a guru and then you're going against. Because for no reason you left us and caused us so much suffering. So not only you're not ungrateful, then you're Guru Drohi, one who rejects his guru. And Krishna hanged his head and very shamefully he came before the gopis. So begging forgiveness. So how much powerful is Srimati Radhika's glance? Isn't it? So Rupa Goswami described, Srimati Radhika's smile is like a bow, isn't it? And her eyes are like showering millions and millions of arrows. And her kajal is like poison on the tip of those arrows. But Radharani's arrows from her glance are not going here and there. Those glances are going right on target into Krishna's heart. So that the glance of Radhika's eyes are so much powerful. Venukkara nipatam skalitam shikandam brastam chapita vashanam rajarajasuno. Radharani's glance is so much powerful that Krishna's flute falls at the feet of Radhika, his pitamba, his yellow cloth falls, and Krishna himself falls. So a question comes, so many times in the scriptures it's described Krishna's power of being a hero. So he quoted some of Suridas and some other poetry, describing, "Oh Krishna, we heard you are such a great warrior, but how is it you've been defeated by a woman?" So Krishna said, "Yes, I also thought I was very powerful, but before Radharani's glance, I became zero, finished. Before I was a hero, now I became a zero."
So, what?
Then Krishna also had so much proud. Actually, this poem that Prabhupada, that's his own composition. So he said, Krishna had so much pride in his own glance. Therefore, my glance was nectar, my glance attracts everyone. Before Radharani's glance, Krishna had to close his eyes and no more glances. Finish from that stage. So, lastly, very nicely, he said, "What is the reason we have come for hearing all this guitar? You see everyone taking so many notes, this and that, hearing, but this is not the way we should serve Harikata. Sigyane prayasamu depashana mateva jivanti satmukaratam bradadiyavatam. We have not come for Harikata, for accumulating some knowledge, or for some making ourselves famous, or accumulating some position. We have come here not to accumulate knowledge from Harikata. We have come here for one reason, for seva for Harikata. That our attraction to Radha Madhava should increase. Therefore," last he was praying, "that our bird, our mind should be like a bird, coming to this Vrindavan only for one reason, to get the premoy seva of Radha Krishna, not for anything else. Then we have not come to hear Harikata, we have come to do seva to Harikata."
No, this is not true. We have not come to hear Harikata.
Mean not come for collecting jnana.
Not for Gyan, but hearing Harikatha, Rasi Harikatha, so that our love and affection to Krishna will increase. Not for Gyan. Thank you. Thanks, Shambhav.
একটা নিয়ে এলো তামাল মাইক নিয়ে এলো
বদশি যদি কিঞ্চিদপি বদশি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমুদী হরতি ধরতি বিরমতি ঘোর পুরদরসি ধবে
মোর চমাই মা
Shri Mama Bhava Jala Diratna Bhavatu Bhavati Hamare Satata Manuro Dini Tatrava Manudaya Mati Yatna Chakumbayo Rupari Mani Manjari Ranjaya Tutavanu Daya Desa Ranjaya Tutavanu Daya Desa Rasatu Rasana Chika Modi Harati রাখি মীর মাছি ভাধারাছি ধাবে
राधिका जी के राधिकार माने बहु लोग बहु रोक में वर्णन करे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती और ठाकुर तार चमत्कार चंद्रिका ते वर्णन करे कोनो समय बटु वेश धारण करे कृष्ण जावटे ते जान आर सेखाने बटु वेश धारण करे ओखाने उपस्थित हुए भिक्षा भिक्षा भिक्षांग देही भिक्षांग देही कर रहे हैं। जटला जी देख रही हैं यदि भिक्षुक लौट गया तो हमारी गायें सब नष्ट हो जाएंगी, पुत्र भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ललिताचार्य से कहा जी कहो बहू जल्दी से उनको भिक्षा दे, मैं पर पुरुष के पास में नहीं जाती किसी प्रकार से। बहुत मनाने के बाद में हाथ में थाल लेकर आटा चावल इत्यादि लेकर के आई दरवाजे पर। मैं घुघुट खोले बिना मैं भिक्षा नहीं लेता। फिर बोले मैं यहाँ पर आया हूँ किस लिए, ये भिक्षा के लिए नहीं। आपने जो मान किया है मान को भिक्षा मांगने के लिए मैं अपनी झोली लेकर के आया हूँ। अपना मान हमें प्रदान करिए, आप प्रसन्न हो हमारे पति। बस कृष्ण श्रीमती राधिका जी मुस्कुराकर और जो कुछ ले आई थी उनके सिर पर ढाल करके और बस हंस कर चली गई, बस मान लेकर के चले आए। तो मान का हमारे भक्ति शास्त्रों में एक बहुत महत्व है। अब हम माधुर्य कादंबिनी के विषय पर आते हैं। हाँ,
so man has been described by many different persons in many different ways, but especially our Sri Vishnu.
Oh,
especially Sri Vishnu Chakravarti Thakur, his Chamatkar Chandrika, has described how Sri Krishna described himself as a Brahmin boy and came to the house of Jatila and Srimati Radhika for taking donations, for begging. That time he was calling outside, Biksham Dehi, Biksham Dehi, oh please give some donation. Jatila became afraid, if this Brahmin boy leaves empty-handed, it will be a great misfortune for us and maybe all our wealth and cows will be lost. Therefore, she came to give charity, but that Brahmin, my son will be finished also. But that Brahmin said, I will not take from an old woman. Therefore, Lalita Bishaka, anyhow, with the cajolances of Jatila and Katila, she, Madhika, Radhika, came outside, bringing on one plate many different ingredients like flour, ghee and rice. That time she offered to the Brahmin boy and Krishna said, "Oh Radhe, I'm not interested in these ingredients. I want your man, your angry mood. Please donate that to me." So Srimati Radhika laughed and tipped the plate on the head of Krishna, and smiling she went inside. So this man is very, very worshipful and wonderful for us.
So bhajan guru ka charanashay grahan karke उनसे दीक्षा और शिक्षा लेकर भजन में साधक प्रवृत्त होता है. भजन भी दो प्रकार का होता है, एक अनिष्ठिता एक निष्ठिता. जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है एकांतिक रूप में, उनको कभी शिथिलता आने, भजन में शिथिलता आने की संभावना नहीं रहती और न उनको गिरने का भय रहता है. निर्विघ्न रूप में उनका भजन चलता रहता है. किंतु यदि बुद्धि भी स्थिर नहीं हुई है तो नाना प्रकार की भावनाएं उसके हृदय में आती हैं. भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है. श्लोक का नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोक है. भक्तिर भवति निष्ठिः. तो ये जो अनिश्चिता भक्ति है, इनका श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि ये छह प्रकार की हैं. उत्साहमयी, घंतरला, बुढ़गल्पा, विषय संग्रह, नियमक क्षमा और तरंगरंगी. उसका एक एक करके बतला रहे हैं. पहले उत्साहमयी, जब छात्र पढ़ने के लिए आरंभ करता है प्रारंभ में, तब उसको उत्साह देने के लिए उसके गुरु या शिक्षक, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तब उसके मन में ऐसा आता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया, सब कुछ सीख लिया, और उसको उत्साह होता है. खो जो पहले स्कूल में आने से डरता था मास्टर के पास में, बड़े उत्साह के साथ में अपने आप पुस्तकों को लेकर के वहां पर जाता है. उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में प्रवेश करने वाले जो प्रथम साधक है, जब आता है तो हरि नाम लेता है. गुरुजी कहते हैं देखो 64 बार न यदि हो सके तो जितना है उतना करो, अंततः 16 बार करो और इससे तुम्हारी सांसारिक समस्त आसक्तियां दूर हो जाएंगी और बहुत जल्दी से कृष्ण के चरणों में अनुराग होगा. अब उसको बड़ा उत्साह होता है, बहुत उत्साह होता है. तात्पर्य यह कि मैं अब भजन करने लग गया. जैसे हम लोगों को पहले आने में अभी भी ऐसा लगता है भजन कर रहा हूं खूब. कोई कोई 1,00,000 भी हरि नाम करते हैं, किंतु जब गुरुकुल शासन करते हैं और अंगुली से दिखलाते हैं ये तुम्हारा क्रोध कर रहे हो, तुम्हारे अंदर में बहुत सी कामनाएं हैं, उपदेशामृत का पहला श्लोक वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम इत्यादि अत्याहार वाला, तब अपने और देख करके सोचता है अरे भजन तो कुछ नहीं हो रहा है, तब समझता है अपने आप नहीं समझता वो तो संत हम मैं पंडित हूँ, आप गुरु के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस खूब भजन कर रहा हूँ। तो उसी तरह से भजन में जो उसका उत्साह होता है पहले उसको उत्साहमयी अवस्था कहते हैं भजन क्रिया, इसके बाद में घन तरला। जैसे नवीन छात्र का शास्त्र अभ्यास कभी शिथिल हो जाता है, समझ में आने पर उत्साह होता है और समझ में नहीं आने से निरुत्साहित हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति के अंगों का अच्छी तरह से निर्वाह यदि होता है तो भजन में गाढ़ता दिखती है, और निर्वाह न हो तो उसके भजन में शिथिलता आ जाती है।
So, the sadhu, he begins by taking diksha and shiksha from the Sadguru, and he starts his bhajan. There are two types of bhajan described by Sri Krishna Chakravarti Thakur here. The first is called Nisthita bhajan, when he has, that sadhak has very fixed intelligence, and he cannot become weak or fall down very easily, and he progresses without obstacles, without disturbances. But the second type is called anisthita bhajan, unsteady devotional service. In that condition, the sadhak is plagued by many desires in his heart. The Bhagavatam has described that nasta prayaso abhadasu nityam bhagavatasariya bhagavati uttama sroka bhakti bhagavati naistiki. So that anisthita bhajan has been described to be of six types. They are as follows: utsahanamayi, ganatarala, yuda vikalpa, visai sangara, niyam aksama, tarangarangini. The first one is called utsahanamayi. Utsahan means enthusiasm, just full of enthusiasm. Just like the student, the new student, he goes to school. At first he is a little fearful to approach the school and the teacher, but the teacher gives him so much encouragement in the beginning. Oh, you are such a good boy, you are doing very nicely. After a few days that boy thinks, I am a great pundit. Therefore he becomes very much enthusiastic and he practically runs to school with his books in his hand. Just like in the beginning, the sadhu comes to Guruji and Guruji says, oh, you cannot do 64 rounds, no problem. If you can somehow do 16 rounds, very quickly, all your ashakti will be destroyed, all your material attachment will be destroyed, and you will definitely achieve attraction for the feet of lotus feet of Krishna. Then he becomes so much enthusiastic in his bhajan, and he thinks, yes, now I am really doing bhajan. Guru Maharaj said, just like we are thinking in the beginning and now also. So, but then after some time, he receives chastisement from the spiritual master. Hey, you have many faults. Why are you so angry? You should follow the first verse of Sri Upadeshamrita, Vacho Vega, Manasa Krodha Vega. You should control your mind, your senses, your anger, your tongue, belly, and genitals. You should do all this. Then the sadhak thinks, oh my God, I have no bhajan at all. I haven't even started. Then his enthusiasm becomes weakened. Sometimes out of false ego, the sadhak may think, well, I already know everything. I have perfected my bhajan. I don't need to learn anything anymore from Guru. And he takes off. The second type of initiated bhajan is called Gana Parola. Like the new student at school, when he understands the subject matter, he becomes very happy and enthusiastic. But when he cannot understand because it's a little difficult for him, his enthusiasm becomes finished and dries up. In the same way, sometimes the sadhak in this stage may practice very enthusiastically the limbs of bhakti. His practice is sometimes very thick. And sometimes when there are some obstacles, his practice of bhakti sadhana becomes very thin.
बहुत से ग्रंथों का अभ्यास और उसको स्मरण रखना उस विषय को, बहुत से श्लोकों का स्मरण रखना, ये भी कभी कभी भक्ति में बाधक होता है। ये देखना चाहिए उसको शास्त्रों के बहुत से श्लोक याद हैं, बहुत याद है, बहुत कुछ जानता है, किंतु उसका काम है कि अभी गया है, स्त्री संग इत्यादि की लिप्सा उसके अंदर में है या नहीं, क्रोध है कि नहीं, दंभ है कि नहीं, आत्म प्रतिष्ठा है या नहीं, चित्त कहीं उसका तृणादप सुनेज तरोरपि सहिष्णु अमानी मानद हुआ या नहीं, उस पर विचार करो। यदि अभी काम ही नहीं दूर हुआ, क्रोध ही नहीं दूर हुआ, तो वहां पर शुद्ध भक्ति का प्रवेश कैसे हो सकता है, श्लोक प्रवेश कर सकते हैं। और ग्रंथों का कलाभ्यास आ सकता है ना, कहीं रघुनाथ गोस्वामी जी के
बहु ग्रंथ कलाभ्यास,
नहीं वो नहीं, प्रतिष्ठा सा सवच रमणी में गृह नटे, और मुक्ति व्याघ्र इत्यादि ये सब बतलाया है। तो देखो विचार करो कितने गहरे पानी में, भक्ति के कितने गहरे पानी में हो, विचार करो। हमें पुरुषों को देखकर काम होता है कि नहीं, स्त्रियों को देखकर के काम उत्पन्न होता है कि नहीं, क्रोध होता है कि नहीं, किसी अपनी आत्म प्रशंसा पर कोई बाधा दे तो क्रोध होता है कि नहीं, देखो विचार करो। यदि है तो भक्ति कहाँ भी आई, भक्ति का आभास हुआ। इन सब विचारों को सुन करके विचारते हैं हृदय में तो देखते हैं कि भक्ति तो नहीं है, तो उस समय निराशा आ जाती है, होना स्वाभाविक नहीं। इसलिए विचार करो, इतने दिनों तक हरि गुरु वैष्णवों के साथ में रह करके हरि कथा सुन करके भी अब फिर विवाह की इच्छा क्यों होती है, क्यों होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। वैराग्य तो जरूर आना चाहिए था, कृष्ण तत्व भी जरूर आना चाहिए था, जहाँ भक्ति होती है वासुदेवे भगवती प्रयोजित जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम चक जादो अहेतुकम, अहेतु के रूप में ये सब आएंगे, किंतु अभी तो काम ही नहीं गया, क्रोध नहीं गया, आत्म प्रतिष्ठा नहीं गई। पूछो हृदय से, अपने आप पूछो, देखो तो जो कहाँ हो। मैं तो हैरान रह जाता हूँ, ये इतना दिन हो गया, 20-25 वर्ष भी हो गए, और ये काम क्रोध सब जान ही रहे, जाना चाहिए था। तो ये तो हुआ, जब विचार करेंगे तब कुछ निराशा होती है। प्राचीना नाम भजलम अतुलम श्रीनवतांग में नराशे न जलत हृदयम भक्ति लेशास लसस्य विश्वधर तवाकर्ण कारुण्य बीची। बस केवल एक यही आशा है, क्या? चैतन्य महाप्रभु की कृपा सर्वत्र है, उसकी बूंद कहीं एक हमारे ऊपर में गिर सकती है। किंतु जब विचार करता हूं प्राचीनानाम भजन अतुलम, कैसे कठोर कठोर तपस्या उन लोगों ने की, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य, अभी हमारे गौरकिशोर दास बाबा जी का वैराग्य देखो, कैसा वैराग्य, कठोर वैराग्य। इसके पहले हजारों हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, हम क्या कर रहे विचार करो तो क्या करते हैं। अभी कार्तिक का महीना बन रहा है, खूब डेलिशियस फूड, आकंठ भोजन करते हैं, खूब काते पीते हैं, आराम करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर ललित कीर्तन सुनते हैं, कठोर साधन कहाँ, कठोर साधन। इसलिए विचार करो भाइयों, सब प्रतिष्ठा तक भूलो, काम को भी जय करने की चेष्टा करो, निरंतर कृष्ण अनुशीलन से ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी उपाय नहीं है। इसलिए निरंतर वैष्णव के साथ में रहो, जो तुम्हारे ऊपर में शासन कर सकें, और इन सब ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन श्रवण मुख से अनुसुणिया निरंतर और वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण करो, ये सभी युक्ति। अपने को धिक्कार को है, काम नहीं गया, क्रोध नहीं, दंभ दूर नहीं हुआ, आत्म प्रतिष्ठा की भावना दूर नहीं, है मुझे धिक्कार है, इस प्रकार से करने से ये दूर हो सकते हैं। ये सब बतलाया है इन्होंने, उसी की छाया मैं बतला रहा हूं। बोलो, बट यू शुड वॉट रियलाइज दिस फैक्ट, मन को अधिकार दो भाई, अभी तक ये भोग की लिप्सा क्यों नहीं दूर हो रही, क्यों नहीं दूर हो रही। बहुत बार हम चांस देते हैं उनको, ग्रहण करो, चलो।
Sometimes, even the study and the study of many shastras and the endeavor to remember many, many slokas, sometimes we see even that may become an obstacle in bhajan. Why? That person may know many, many slokas and shastra, but we'll have to also consider, does he have lust, anger, pride? Is he still greedy for the association of women? Is he still very much anxious for his own name and fame? We'll have to also consider, in his heart or her heart, has the four symptoms of Chanada Pisanichena Tanori Vasuishana Amadi Namadi Nakita Misra Hari. Are they giving respect to all others? Are they demanding respect for themselves? We'll have to look at all these things. Therefore, you may have entered many, many books and entered many, many verses, but have you entered Sudha Bhakti, pure devotion? If lust and anger are still present there, then how you can touch Sudha Bhakti, pure bhajan? Therefore, Raghunath Goswami in his Manashiksha has described, or that Pratishtha is like a dog eating whore dancing in the heart. And the desire for mukti is like a tigress. Therefore, we should see all these things. When I see an attractive young girl, does lust appear in my heart? When my name and fame is checked by someone else, do I become angry with them? We should consider all this. And if we consider all this, then we must become hopeless. Alas, we should think upon ourselves only. Alas, alas, fie on me. We have done so much satsanga. We have heard so much harikatha. Then how is it possible that still the desire to marry is in my heart? Then if we see Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita, Jnanadasya Vairagyam, Jnanachaya Dhoitikim, if Sudha Bhakti has entered the heart, then it 100% that person must also be possessed of the qualities of possessing Krishna Tattva, knowledge of Krishna Tattva, Jnana, as well as Vairagya, renunciation from material enjoyment. Therefore, we should ask ourselves, where am I? What is my position? I have been here 20 or 25 years, but lust, anger, desire for pratishtha, all these things are still present in our hearts. Therefore, these things must be dispelled, these things must be thrown outside. Therefore, one verse is Prachina Bhagavan
Prachinanam Bhagavan
Bhajanam Atulam. Oh, alas, seeing the sadhana of the previous great practitioners of bhakti, I have become helpless. How is the Vairagya of Sri Gokishodas Babaji Maharaj? How much strongly he is renounced. But there is only one hope for us, that is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is flowing everywhere. How the previous authorities performed sadhana bhajan for thousands of years. And look at us in comparison. In this Kali month, we are eating so many delicious foodstuffs up to the throat, and even more. We are hearing nice kirtans. We are sleeping. We are moving here and there. But have I conquered lust? No, we have not. Therefore, we should look upon ourselves. Tikha, fie on us, fie on us. Therefore, brothers and sisters, stay in Vaishnava Sangha. In this Sangha, you will be chastised and disciplined, and you will be protected. Therefore, criticize yourself. Look at yourself. Do consideration upon yourself. Do I still have pride and desire for name and fame? If we think in this way and lament, then these things will definitely leave us.
Jab aadmi कोई साधक गुरु से शिक्षा दीक्षा इत्यादि लेकर के जब भजन आरंभ करता है तो तरह तरह के उसके मन में विचार उठते हैं। वह सोचता है मैं अकेले क्यों भजन करूं, अपने मैया को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, पुत्र को, सबको वैष्णवी दीक्षा गुरु से दिला दूं और घर ही में एक छोटा सा मंदिर बना लूं और सबको भगवान की सेवा में भजन में लगाऊं और मैं भी भजन करूं, घर वाले भी भजन करें। और कभी कभी सोचता है यह बात ठीक नहीं है। हमारे नारद ऋषि रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि यह सब छोड़ करके, घर बार छोड़ करके वृंदावन में या कहीं कृष्ण की लीला स्थली में, नवद्वीप में अथवा जगन्नाथपुरी में जाकर के वहीं पर वास करूंगा। इसी से ही हमारे जितने प्रकार के विक्षेप हैं, अभी मन संसारी कामों में घूमता है, इन लोगों के साथ में रहने से सबको संपूर्ण रूप से छोड़ दूं और छोड़ करके वहां पर वृंदावन में ही रहूंगा। आई विल बी इन वृंदावन, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन वेस्टर्न कंट्रीज और एनीवेयर एल्स। मैं वृंदावन में रहूंगा और वो भी रहूंगा कहाँ, सेवा कुंज में ही रहूंगा, उसके ठीक ऊपर से सेवा कुंज का दर्शन कर सके या कर सकूं। स्त्री भी सोचती है, पुरुष भी सोचते हैं ऐसा, और वहीं पर रह करके अपना जीवन कृतार्थ कर लूंगा। जब घर छोड़ने का विचार आता है तो फिर उसके मन में तर्क उठता है। देखो अभी भोग की इच्छाएं तो मेरी पूर्ण हुई नहीं है, इसलिए भी संसार को भोग लूं, बाल बच्चों के साथ में, स्त्री के साथ में रह लूं, पति के साथ में रह लूं। जब इनका प्रचुर भोग कर लूंगा तो मन अपने आप उब जाएगा और तब छोड़ूंगा, अभी क्यों छोड़ूं। जब वृद्धावस्था आएगी अपने आप सब छूट जाएगा। फिर सोचता है अच्छे क्या अभी ही त्याग करूं या कुछ दिन और बाद में कुछ और ठहर जाऊं तो अच्छा है। जो प्याज सनैर माया जोशी तेव विनिर्मिता तमिक्षता आत्मनो मृत्युम तीर्णय कूपम इवावृतम। भगवान कपिल देव अपनी मैया से कह रहे हैं, भगवान की रची हुई यह स्त्री रूपिणी जो माया है, सेवा करने के बहाने से तुम्हारे पास में आती है, सुंदर भी है, मधुर भाव भी है और सेवा भी खूब करती है, और फिर तिनके से ढके हुए कुएं के समान उसको अपनी मृत्यु समझो। कुएं में आग लग रही है, कुएं का तेल है, आग लग रही है, उसी तरह से यह है समझो। स्त्रियों के लिए भी पुरुष का ऐसा व्यवहार समझो, दोनों। देखो स्वभाव से ही स्त्रियां सुंदर और मधुर स्वभाव, और फिर कभी दुर्गा बन जाती हैं। प्राणों को किसी को हरण करने में, उसे बीज देने में या काट देने में या कटवा देने में तनिक भी लेश नहीं लगता। पुरुषों का भी ऐसा, दोनों का ऐसा। और जब दोनों भजन परायण हैं तो सीता ठाकुरानी को देखो, मालिनी देवी को देखो, गंगा माता ठाकुरानी को देखो, जगत के पूज्य सब बनी हुई। इसलिए इस सब पर विचार करो। इन वचनों से जो शास्त्र के वचन है, उदाहरण है, इससे विश्वास हो जाता है कि गृहस्थाश्रम स्त्री पुरुषादि तिनकों से ढके हुए कुएं की तरह एक धोखे की टट्टी है, धोखा है समझो। उस संग में आनंद नहीं, यदि आनंद होता तो रोज रोज ऐसा करने से टीबी और कैंसर और कितने रोग हो जाएंगे, ये भी देखो। मदिरा पीने से आनंद है तो पीते 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 पागली हो जाए या मर जाए, पाकस्थली खराब हो जाए। इसलिए संसार के भोग भी ऐसे ही दुखप्रद हैं ऐसा समझो। भागवत में कहा गया है जो दुष्ट जान दारा सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशा जहौ जुवाई व मलवत उत्तम श्लोक लालसा। ये भरत जी के लिए, महाराज भरत 50,000 वर्ष की उम्र में, 1,00,000 की उम्र में से 50,000 वर्ष तक संसार का भोग किया, सुंदर स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ, एक छत्र पृथ्वी का, और सुंदर स्त्री पुत्र मित्र राज्य जो अवस्था में ही बिष्टा के समान उनको प्रत्याग करके भजन करने के लिए एकांत वन में चले गए, जिनका त्यागना बड़ा ही कठिन है, सबको त्याग करके चले गए। इन वचनों को देख करके साधक गृहस्थ आश्रम को छोड़ने की फिर चेष्टा करता है, प्रयत्न करने लगता है, निश्चय करता कि मैं अब यह संसार में नहीं रहूंगा। स्त्रियां भी सोचती हैं मैं अब संसार में नहीं रहूंगी, किंतु फिर शास्त्रों के वचन उसके सामने आते हैं, अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजात्मजा अनाथो मामृदिते दीना कथम जीवन्ति दुस्सु दुखिता। हाय हाय, मैं घर छोड़ करके जाऊं, मुझे बहुत पाप लगेगा, मेरे माता पिता इस समय वृद्ध हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं, अभी स्त्री भी अभी ना समझ है, बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, यदि छोड़ करके चला जाऊं तब तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे, पिता मर जाएंगे, इसका पाप किस पर लगेगा, छोटे छोटे बच्चे बिल बिलाएंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा भरण पोषण नहीं होगा, क्या होगा, ये कैसे जीवन धारण करेंगे। उसकी मनोवृत्ति पे झट बदल जाती, जो पहले जो गृह छोड़ने की बात थी वो रह जाती है दर। ओह, ये अत्यंत अन्याय है, वृद्ध माता पिताओं और बच्चों असहाय दीन बालकों को छोड़ देना ये ठीक नहीं है। फिर मन में सोचता है जाने दो, माता पिता और स्त्री बाल बच्चों की बात, मेरा मन भी तो अभी नहीं भरा है ना, अभी मेरा मन भोगों से उबा नहीं है और इनको भी देखना है, इनको छोड़ करके अभी नई नई दुकान है, नई नई बिजनेस है, और इन सब को छोड़ करके भिखारी बन जाऊं, ओ ये ठीक नहीं है। एवं गुहा गृहा से आप क्षिप्त हृदय मूर्धियम अतृप्तस्तान अनुध्यायन मितो अंदम विशते तमः। गृहस्थी के मन से जिनका मन विक्षिप्त रहता है, स्थिर नहीं कर पाता, भोगों से भी अभी तृप्त नहीं हुआ है, हम लोग लाल कपड़े लिए हैं, संन्यास भी लिए हैं, भोगों से वितृष्णा हुई है कि नहीं जरस देखो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो घर बार सब छोड़ करके केवल खड़ाऊं पहनते थे और शरीर पर कुछ नहीं, केवल एक ये, चाहे जड़ा हो गर्मी हो सब दंडवती परिक्रमा करते थे, और आज भजन से कोई संबंध नहीं, घर में जाकर के फिर से बूढ़ी औरत से विवाह कर लिया और घर में के कामों में फंस गए हैं। बहुत से हजारों लोगों को देखता हूं। इस प्रकार से तरह तरह के अभी विचारों को करता है, इसको कहते हैं बूढ़ विकल्प, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और बतलाना है। बोलो भाई, कोई हम पर बिगड़ना मत, डोंट एंग्री टू मी, आई एम टेलिंग सम पिंचिंग वर्ड्स बट नॉट माई व्हाट हैज बीन रिटन।
One person has taken Diksha and Shiksha from the spiritual master. Then they began to think, what should I do? This is all called Buddha Vikalpa, oscillating of the mind. After all, I'm not alone. I have my parents, my wife, my children. I should also encourage them all to take Diksha from the spiritual master. I can build one small temple here, and we can all do Hari Bhajan together. But then again, his mind thinks, hang on, this is not a good idea. Because after all, there are many great devotees like Sri Narad Muni, Sri Rupan, Sri Sanatana Goswamis. They left everything for Hari Bhajan. Like, therefore, I will go to Jagannath Puri and I will stay there and do bhajan. Because if I stay here with the family members and materialistic persons, then material ideas, material desires will definitely enter my mind. Therefore, I'll go to Vrindavan and I'll build a room on the top of Sevakunj and look out from there. But then the mind will oscillate again. How can I leave then? After all, I still have material desires. So to leave in an immature state is not correct. This will be like false. So after I enjoy for a while with my wife and kids, wife and children, then automatically the material desire will be exhausted and then I can do bhajan. So then he thinks, should I leave now and take sannyas or should I wait for a few more days? Sri Kapiladev has warned, beware. Maya has come in the form of a young woman to perform your seva, and by performing your seva, she will pull you into death. She is like a blind well. You know, blind well looks very nice on the top, but inside is full of suffering. She is death personified. She is like tail coop.
Oil well.
What is an oil well?
There are so many wells in America, here in India, from there, oh, oil comes. Kerosene oil or what? Petrol and it. And sometimes, oh, some fire. And then everywhere fire.
So she is like that. Which one Marama said, I have to say this also. First she is Chandramukhi, like a moon, so sweet. But after a few weeks, then she's like the sun. Sudimukhi. And after a few more weeks, then she's like a volcano. Therefore, she's like, then after a few more days, she becomes like Durga, very ferocious. She can plunder your wealth, cut your throat, or kill you. She can become like that. She will become like that. Of course, we're not speaking for the Vaishnavis like the Gangamata and others. There we must have faith, strong determination and belief that in the Grihastha ashram there is no happiness at all. So we must have the strong faith and understanding. This tendency to enjoy material happiness is the cause of all miseries and suffering. For example, if one tries to enjoy by drinking excessive liquor, then what is the effect? His liver will fail. He will get many types of cancer. Therefore, like Bharat Maharaj, and this has also been said, women should understand this is for a man, and man should understand that Maya is in the form of a woman, vice versa. Therefore, we should think like Bharat Maharaj, Uttam Shloka Lavasa, how the age in his youth, at the end of 50,000 years of material enjoyment, he left his very attractive wife, his very affectionate children, the huge opulence of his kingdom. He left it like we leave stool in the morning. But to leave that material desire, to leave all this material enjoyment is very, very difficult. So he or she, at that time, tries to develop the courage or the determination to leave the Grihastha ashram. But then again they think, hang on. The scriptures have described that if I abandon my mother and father, who are all alone, there is no one else to take care. If I leave them and perform bhajan, then maybe my father will die. That sin will come to me. My wife is very innocent. She does not know anything of worldly matters. And my children are very young. How will they become educated and who will maintain them? They will become orphans. There will be no protection for them. Thinking like this, his mind oscillates, and his or her previous determination or sankalpa to renounce everything is destroyed. Again, he thinks, hang on, I have so many new businesses, a new car, a new house. How can I leave everything and become a beggar? Therefore, his mind oscillates between one and the other. Therefore, the Sikabuladev describes, therefore, because house, the mind of the family member is always attached to the object of the senses. His mind is always disturbed. And Guma said, what to speak of Grihastha? I know so many persons, thousands and thousands I have seen, Guru Maharaj said, who have taken sannyas, a red cloth, and even in the winter, they only wear this one cloth on the top. They perform wooden sandals. They perform so many dandavat parikrams. And now, where are they? They have left everything. They have no relation with Hari Bhajan, no relation with Guru Vaishnav, no relation with anything. Guru Maharaj said, we have seen thousands come and go like that.
Thank you.
Hey.
This is called Buddha.
Kalki Parikrama.
Oscillation of the moment.
Kalke Baki. Redhuman, Radharaman, Radha
Gokulananda,
Radha
Gopinath.
Kal hum log jayenge. We will go what I told all these places. Now, any announcement?
Hare Krishna. The devotees who have arrived today, please register as soon as possible. The back there is a table where one or two devotees sit. If you do this, it will be very helpful for our overall smooth management of the parikrama, especially buses and accommodation. We humbly request you please do this as soon as possible. Tomorrow, no bus day. Again today, the devotees were, although we had enough buses, but there was sometimes no place for those who had properly registered. We request you, even though you have your card, you have registered, be on time in the bus. Don't come late, because we have to adjust. Those who are on standby, when nobody shows up, we give the seats away. So even though you have your card, and you have paid properly everything, still you have to come on time when we go by bus. Thank you.
Mama. এক নম্বর এবং দু নম্বর বাসে অধিকাংশ ভারতীয় যাত্রীরা যাচ্ছেন, তো অনেক সময় সিট না থাকলে অন্য বাসেও যাচ্ছেন। কিছু বেশ চতুর বৈষ্ণবগণ এখানে বৃন্দাবনে বসবাস করেন, তারা টিকিটও করছেন না, কিছু করছেন না, তারা বাসে যাচ্ছেন।